نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم اور تم سب کا معبود ایک ہی ہے اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور وہ بہت رحم کرنے والا اور مہربان ہے. سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 163 ہے. اس آیت میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم سب کے پیدا کرنے والا ایک ہے. میں اور آپ اس کو مانے یا نہ مانے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. بلکہ یہ جو باتیں میں کر رہی ہوں اگر چھوٹے چھوٹے جملوں میں آپ نوٹ کرتے جائیں تو آپ کے اس ایک بڑا خوبصورت سا پوائنٹ بن جائے گا کہ کبھی بھی مختصر انداز میں آپ کو کسی کو مسلم کریڈ بتانا ہو, اسلام کیا کہتا ہے, تو آپ دوسروں کو بڑے اچھے طریقے سے بتا سکتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز اگر آپ دیکھیں کہ اسلام کے اندر وہ کیا ہے کہ اللہ کو ایک ماننا, تو پہلا رکن, یعنی رکن سے مراد وہی کہ ٹیبل کی ایسی ٹانگ کہ جس کے اوپر یہ ٹیبل کھڑا ہے اسلام کے نام کا, یہ کون سا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا. اس کو کہتے ہیں شہادتین. شہادت کہتے ہیں وٹنس, کسی چیز کی وٹنس دینا. آپ باہر راہ چلتے دیکھتے ہیں گاڑی آئی, اس نے دوسری کو ٹکر ماری, آپ کو پتا ہے کہ اس کا قصور ہے. آپ پوری ساتھی آپ سے پوچھتی ہے کہ بتاؤ بھائی کس کا قصور ہے, تو اگر آپ اس وقت کہتے ہیں کہ ہاں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پہلے والے نے دوسرے کو ٹکر ماری, تو یہ آپ کا گواہی دینا ہے. تو شہادتین کا معنی دو گواہیاں. پہلی گواہی کیا ہے کہ اللہ ایک ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا, اور اس کو ماننا ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے. ٹھیک ہے, نہ صرف یہ کہ اللہ ایک ہے اس کو ماننا ہے بلکہ اس کی بات کو بھی ماننا ہے. اس کو ایک جملے میں اکثر ہی میں سمیٹتی ہوتی ہوں کہ رب کو بھی ماننا ہے اور رب کی بھی ماننی ہے. بہت سارے لوگ رب کو مانتے ہیں, انکار کر ہی نہیں سکتے, جو بھی کرتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں, ان کی فطرت بتاتی ہے کہ لا الہ الا اللہ. یہ الگ بات ہے کہ وہ کسی کسی بزرگ میں اس کا روپ دیکھتے ہیں, کسی بت میں اس کا اوتار دیکھتے ہیں, کہیں اس کا کچھ, کہیں اس کا کوئی روپ دیکھتے ہیں, لیکن ہر انسان کی فطرت میں ہے کہ لا الہ الا اللہ. دوسری بات یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کہتے وقت بندے کے دل میں جس چیز کا یقین ہونا چاہیے. دیکھیں کہ اگر یہاں بیٹھے ہیں, آپ مثال لیجئے کہ کوئی بھی ایسا راہ چلتا شخص ہے اور آپ اسے کہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھو, نہیں تو تمہیں مار دیں گے. چلو لا الہ الا اللہ پڑھو, وہ ہمارے کہنے پہ اگر پڑھ بھی دیتا ہے تو کیا وہ مسلمان ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. اسلام کی بنیاد بندے کے دل کے اندر سے اٹھتی ہے, زبان تو صرف اس کو ڈکلیئر کرتی ہے. جیسے آپ اس کو بالکل اس طرح سے سمجھیے کہ ایک لڑکی اور لڑکے کا نکاح کیا جاتا ہے, تو آپ دیکھتے ہیں کہ اگر زبردستی کوئی لڑکی سے ہاں کروا بھی لے تو نکاح نہیں ہوتا, یا کوئی لڑکے کے سر پہ گن رکھ کے کہ کرو اس لڑکی سے نکاح, نہیں ہوگا. کب ہوتا ہے؟ جب دل سے دونوں ایک دوسرے کو تسلیم کرتے ہیں, پھر اس کی کچھ شرائط ہوتی ہیں, دونوں طرف گواہ ہوتے ہیں, لڑکی کا باپ ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں ہم جانتے ہیں نا. اب اس مثال کو اپنے اوپر لے کے دیکھیے کہ اسلام کسی کو مجبور نہیں کرتا کہ تم لا الہ الا اللہ کہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک کسی دور کے مسلمانوں نے کسی کو مجبور نہیں کیا. تو پہلی چیز لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے جو ہمارے دل میں آنی چاہیے وہ کیا ہے کہ انسان یہ اپنی مرضی سے کہے, اس کو کوئی مجبور نہ کرے. اب آپ کہیں گی بچیاں خاص طور پہ کہ ہم نے تو کبھی کہا ہی نہیں. ایک بچہ مسلمان گھر میں پیدا ہوتا ہے, اس سے تو کبھی کلمہ نہیں پڑھایا, آپ سب جانتے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا 7 سال کا ہوئے, 8 سال کا ہوا بچہ تو کلمے کی کوئی رسم ہو, کبھی نہیں کیا نا. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے تو یہ کلمہ نہیں پڑھا تو ہم مسلمان کیسے ہوں گے؟ تو آپ سب جانتے ہوں گے, اپنی ماؤں سے جا کے آج پوچھ لیجئے گا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا ایک ریچول کیا ہے کہ اس کے سیدھے کان میں اذان دی جاتی ہے اور بائیں کان میں اقامہ کہی جاتی ہے, اشہد اللہ الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ. اب اس وقت چونکہ بچہ بولتا نہیں ہے نا, تو بچے کی جگہ پہ کوئی اور بول دیتا ہے. تو ہم سب بھی کلمہ پڑھ چکے ہیں, ہم سب نے بھی یہ گواہی دی تھی اور بغیر کسی مجبوری کے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں بولے تھے تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. ٹھیک ہے, तो सूरत बकरा की आयत 256 में आता है कि ला इकराहा फिद्दीन, दीन के मामले में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि कद तबय्यना रुश्द मिनल गय, इसलिए कि हिदायत और गुमराही आपस में बिल्कुल अलग है। हिदायत तो चमकता हुआ सूरज है और गुमराही जो है वो अंधेरे हैं। इसलिए जो शख्स तागूत का इनकार करे और अल्लाह पर ईमान लाए, इसने मजबूत सहारे को थाम लिया जो कभी नहीं टूटेगा और अल्लाह सुनने और जानने वाला है। तो दिल की गहराइयों से ला इलाहा इल्लल्लाह उठता है, ठीक है, वो हकीकी माबूद है, खालिक है। लिखे, अगर आप पॉइंट्स लिख सके ना, कि जब हम कहते हैं ना इलाह, ला मैंने नो, इलाह मैंने अल्लाह, नहीं है कोई इलाह, तो लफ्ज़ इलाह में खालिक, यानी दूसरे लफ्ज़ों में आप लिखते हैं नहीं है कोई मुझे पैदा करने वाला। फिर दूसरा उसमें हम इकरार करते हैं नहीं है कोई रिस्क देने वाला, सस्टेनर, प्रोविजन देने वाला, कोई मुझे कुछ दे के किसी चीज़ की मेरी ज़रूरियात को पूरा करने वाला, ये अल्लाह के सिवा और कोई नहीं हो सकता। तीसरी चीज़ क्या है कि मालिक, ओनर, जैसे आप कहते हैं कि इस घर का मालिक कौन है। अब हम में से कोई एक ही होगा ना मालिक जिसने मैं बुलाया, और वो भी किस हद तक मालिक है हम नहीं जानते। मिसाल है कि शाजी इस घर की मालिक है, शाजी इस घर की कितनी मालिक है, हम सबसे ज़्यादा इनके अख्तियार है ना, ठीक है, ये इधर सोफ़ा रखे, इधर कुर्सी रखे, मेज़ रखे, और सच्ची बात है असल मालकन औरत ही होती है, मर्द तो बेचारे ऐसे ही थोड़ी देर रात को आते हैं सोने के लिए, सुबह उठ के चले जाते हैं, बेचारे अपनी मर्जी से कुछ खा नहीं सकते, हम सारा दिन उनके सर पे सवार रहते हैं, ये ना करो वो ना करो। हाँ, तो मालिक, अब ये जितना इनका इख्तियार है, मेरा और आपका तो नहीं है ना, जहाँ मैंने इन्हें कहा बैठ जाओ हम बैठ जाएं, अगर हम में से कोई नहीं हम यहाँ नहीं ऊपर जा रहे हैं, तो ये बड़ी बदतहजीबी की बात होगी कि बगैर उनकी मर्ज़ी के हम जा रहे हैं आ रहे हैं। किसी हद तक ये हमें चॉइस देंगी, आप जो मर्ज़ी करें अपना घर समझें, लेकिन देखा जाए तो ये इस घर की मालिक है। लेकिन ये कितनी को मालिक है, मेरा नहीं ख्याल कि ये घर अपनी मर्ज़ी से बेच सकती हैं अपने शौहर से बगैर पूछे, राइट। तो दुनिया में हर चीज़ की जो मलकियत होती है ना, उसके मुख्तलिफ दर्जे होते हैं, ठीक है। हाँ, अगर मिसाल है कि ये पेन आपका है, आप चाहें इसको रखें, किसी को दें, तोड़ें फोड़ें, आपके अपने कपड़े हैं, हो सकते हैं आप अपने कपड़े खुद रख लें, किसी को दे दें, आपके मियाँ को कोई कंसर्न भी ना हो। तो दुनिया में मुख्तलिफ चीज़ों की मलकियत का मुख्तलिफ मकाम होता है। हम जब कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो उसमें हम इस बात का इकरार करते हैं कि मेरा होल सोल कुल्ली मालिक अल्लाह है, चाहे वो मुझे बेचे चाहे मारे, अल्लाह के सिवा और कोई नहीं है मेरा। अब आप सोचिए कि दुनिया में हम किसी को जब मालिक कह देते हैं, तो उसकी कितनी मर्जी मानते हैं। आप किसी जगह जॉब करते हैं, तो जो बॉस होता है आप उसको ही मालिक कह देते हैं। बाज़ औरतें अपने शौहर को कहती हैं ये मेरा मालिक है, ये मेरे घर वाला है, लेकिन आप सोचिए कि उन सब ने हमें क्या दिया और अल्लाह की ज़ात ने हमें क्या दिया। तो अल्लाह को अपना मालिक समझना है, राज़िक, मालिक, खालिक, जो नफ़े नुकसान का मालिक है वो अल्लाह। सारी दुनिया मुझे फ़ायदा देना चाहे, और अगर मेरा रब ना चाहे, तो मुझे एक पैनी का फ़ायदा नहीं दे सकता, और सारी दुनिया मुझे नुकसान देना चाहे, मेरे खिलाफ़ बददुआएं करे, मुझे मेरे खिलाफ़ जाके बातें करे, कुछ करे, हुकूमत को कुछ कह दे, लोगों को कह दे, कुछ नहीं को कर सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। अब आप सोचिए, जब हम अल्लाह सुब्हान तआला की इस कुदरत को अपने ऊपर महसूस करते हैं, तो फिर क्या हम अल्लाह के आगे मजबूर नहीं है? जो जिसका जितना डिपेंडेंट होता है वो उसकी उतनी बात मानता है ना। बाज़ दफ़ा बीवियाँ घरों में गलत चीज़ें भी देखती हैं पर चुप करती हैं, कहती हैं ऐसे मर्द नाराज़ हो जाएगा, नाराज़ गुस्सा करेगा, तलाक दे देगा, कुछ भी सोचती हैं ना। हालांकि दुनिया में कोई इंसान किसी को नफ़ा नुकसान नहीं देता, अगर कोई होगा भी तो अल्लाह के हुक्म से होगा, लेकिन क्या हम अल्लाह से इतना भी नहीं डरते? जब हम अल्लाह को अपना खालिक मालिक कहते हैं, जब हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, तो हम कहते हैं अल्लाह तेरी मानूंगी, अल्लाह तेरे सिवा किसी की नहीं मानूंगी, अल्लाह सिर्फ तुझसे डरूंगी, तेरे सिवा किसी से नहीं डरूंगी, अल्लाह सिर्फ तुझसे उम्मीदें रखूंगी, तेरे सिवा किसी और से नहीं रखूंगी। और आप एक लम्हे के लिए देखिए हम किस किस चीज़ में अल्लाह के आगे मजबूर हैं। सूरत यूनुस की आयत नंबर 31, अगर आप नोट कर लें, जाके उसका तर्जमा कुरान से खुद लिख लीजिए, कुल मई यरज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्द, कि आप कह दीजिए वो कौन है जो तुमको आसमान और ज़मीन से रिस्क पहुंचाता है। ज़रा एक लम्हे के लिए सोचें, क्या खा के बैठे हैं हम इस वक्त, सुबह से खा रहे हैं ना, कितना पानी बरसता है हमारे घरों में, जितना पानी किसने दिया। आज किसी सुपर पावर को ले, अमेरिका सबसे बड़ी ताकत समझी जाती है ना इस वक्त, आप जाके अमेरिकन वेबसाइट्स पे जाके सर्च कर लें कि क्या अमेरिका वाले बारिश बरसा सकते अगर अल्लाह ना चाहे। ये तो सुन लिया कि आर्टिफिशियल बारिश कहीं ना कहीं इलाकों में जाके पानी जमा करके वहाँ बूंदाबांदी करा दी, लेकिन हो रही हो बारिश तो कोई इसको रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता, ये अल्लाह की ज़ात है। फिर अल्लाह ताला कहता है, बताओ वो कौन है जो कानों और आंखों पर इख्तियार रखता है। आप ज़रा अपनी आंखों को झपक के देखिए, अभी हमें यहाँ बात किए हुए चंद मिनट हुए हैं, सिर्फ तब से लेके अब तक आप कितनी दफ़ा अपनी पलकों को झपक चुकी, मैं झपक चुकी। किसने कहा हमारी पलकों को झपको? क्या हम सुबह उठ के ऑर्डर देते हैं पलकों को अब तुम झपको? हमारी आंखों में कितनी मशीनें चल रही हैं, ये कौन देख रहा है? आप कहते हैं मेरी आंख, ये जाहिर है, किसी की काली है, किसी की ब्राउन है, किसी की मोटी है, किसी की छोटी है, लेकिन अंदर से सब का सिस्टम एक है। और अल्लाह की ज़ात है, जब चाहे इन आंखों की बिनाई छीन ले और जब चाहे इन आंखों को देखने की ताकत दे। अब आप सोचिए, आप कहती हैं, अपने लफ्ज़ों में लिख के देखिए, अल्लाह मेरी आंखों का मालिक है, तो फिर मेरी आंखें क्या देखेंगी? जब मैं कोई गलत चीज़ देखूंगी तो मैंने खयानत की ना। अल्लाह कहते ये नहीं देखना, मैंने मना किया है। जैसे बाज़ लोग मसखरापन करते हैं ना, जब उन्हें कहा जाए कि लड़कों को हुक्म नहीं है कि लड़कियों की तरफ नज़रें भर के देखें, तो कहते हैं अल्लाह ने हुसन बनाया, वो कहता है देखो अल्लाह ने हुसन बनाया यानी खूबसूरती बनाई, इसलिए हम लड़कियों को देखते हैं। तो उनको क्या जवाब दिया जा सकता है कि जिस अल्लाह ने बनाया उसी ने मना किया कि ना देखो? ठीक है, कुरान में आता है ना कि मोमिन मर्दों और औरतों को कह दो कि यग़ुद्दू और यग़दुद्द न मिन अबसारिहिन, अपनी आंखों को झुका लो। तो उसने तरीके सिखाए। फिर कानों की बात देखिए, कान अल्लाह ने बनाए, मुझे और आपको दिए, क्यों दिए? अल्लाह की मर्ज़ी की बातें सुनी जाए, अच्छी बातें सुनी जाए, दूसरे का दुख दर्द सुना जाए, कुरान सुना जाए। अब अगर हम इन कानों से गलत चीज़ें सुनते हैं तो क्या हम ला इलाहा इल्लल्लाह में लफ्ज़ इलाह का हक अदा करें? हमने तो कलमा पढ़ते हुए ये कहा था कि अल्लाह मेरे कान वो ही सुनेंगे जो तू सुनवाना चाहेगा, जो तुझे पसंद है। तो हम दिन रात कितनी चीज़ें अपने कानों से गलत सुनते हैं, फिर कभी हम फन के नाम पे सुनते हैं, कभी दोस्तों के नाम पे सुनते हैं, कभी खुशी कभी गम, कितनी गिबतें सुनते हैं, कितनी बुराइयाँ सुनते हैं। एक बंदा अगर हकीकी मोमिन हो जाए तो ये दुनिया जन्नत है। इस दुनिया में रहने वाले अगर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के तकाजे पूरे कर ले तो ये दुनिया जन्नत होगी। और जन्नत जो हम कहते हैं ना, जिसमें हमने जाना है इंशाल्लाह, वो जन्नत इसलिए नहीं खूबसूरत कि वहाँ बड़े खूबसूरत फल हैं और नहरें हैं और दूध की नहरें हैं, वो तो है, असल खूबसूरती तो जन्नत की ना वहाँ के इंसान है। इस दुनिया में हम रहते हैं तो मिसचीफर हैं, जिसको आप कहें कि हम दुनिया में डिस्टरबेंस पैदा कर रहे हैं। जैसे आप देखिए, हर मुल्क में कुछ ना कुछ फसाद करने वाले लोग होते हैं ना, गवर्नमेंट पुलिस बनाती है, पुलिस सारा दिन आगे पीछे फिरती है, कोई वहाँ तोड़ गया, कोई फोड़ गया, चोरी कर दी। तो जिस तरह दुनिया की पुलिस है ना, इस तरह अल्लाह ने फरिश्ते रखे हुए हमारे हर बुरे अमल को देख रहे हैं और अच्छे को भी देख रहे हैं। तो आज से जब भी कभी आंखों से गलत चीज़ देखे तो एक दफ़ा ऊपर आंखों देख अल्लाह से पूछ ले कि अल्लाह मैं ये देख लूँ, आप मेरी इस चीज़ को देखने से मेरे से नाराज़ तो नहीं है? अल्लाह जी ये चीज़ मैं सुन लूँ, क्या आपको मेरा ये चीज़ का सुनना अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है? फिर आगे का वो कौन है जो जिंदा को मुर्दा से निकालता है और को मुर्दा को जिंदा से निकालता है? मैं कहती हूँ कि सिर्फ एक बच्चे के दुनिया में आने के स्टेप्स, मरहले अगर हम सामने रखें तो हमें अल्लाह के ला इलाहा इल्लल्लाह होने की गवाही मिल सकती है। कितना नामुमकिन काम है। आप देखिए, एक बच्चे की तख्लीक का पहला मरहला उससे लेकर डिलीवरी तक के मराहल अगर हमने दिन रात अपनी आंखों से ना देखे होते तो कोई मानता? कभी मान सकते? कहाँ से अल्लाह बच्चे को एक दुनिया में लेकर आता है? ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। जो ये कहते हैं ना कि अल्लाह किधर है और कौन अल्लाह है, तो उन्हें को कि एक बच्चे को देखो, ये बच्चा कहाँ से आ गया? अगर आप देखें कि ये मेज़ आपके घर में 1 साल से, तो इतने का इतना ही पड़ा हुआ है। अब ये नहीं कह सकती पहले ये इतना था, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर इतना बड़ा हो गया, और 1 साल हम बाद हम आएंगे तो ये इतना बड़ा हो गया होगा, नहीं होगा। लेकिन आपकी गोद में अगर एक छोटा सा बच्चा पहले नहीं था, आज है, 1 साल बाद हम आएंगे तो इंशाल्लाह वो बहुत बड़ा हुआ होगा। ये अल्लाह की शान है, इतने काम करता है वो रब। और फिर अल्लाह ताला कहते हैं वो कौन है जो तुम्हारे तमाम कामों की तदबीर करता है? आप प्लानिंग करते हैं, तदबीर का मतलब है प्लानिंग। आपने ये दर्स रखा, प्लान किया ना, दिन का इंतखाब किया, लोगों को बताया, घर साफ किया, लोगों को रिमाइंडिंग भेजे, सब कर करा के आपने ये किया ना, फिर ये एक छोटा सा दर्स हुआ। तो आप ज़रा सोचिए कि इस पूरी दुनिया की प्लानिंग अल्लाह ने की होगी कि नहीं की होगी? कितना सेट सिस्टम है, सूरज भी आ रहा है तो चांद जा रहा है, रात आ रही है तो दिन जा रही है। कभी ऐसा हुआ कि सूरज भी और चांद भी आ जाए और अल्लाह ताला कह रहे हैं सूरज को जाओ ना तुम जल्दी करो, चांद ने आना है? तो सूरज के मैं तो नहीं जाता, मेरी मर्ज़ी, कंधे उचकाए, जैसे बाज़ दफ़ा हमारे बच्चे उचकाते हैं। कभी आपने कायनात में गौर करके देखा है, हर चीज़ ऐसे सेट सिस्टम से चल रही है। कुल लोई फी फलक यसबहून, अल्लाह कहते हैं कैसे ऑर्बिट के अंदर सब घूम रहे हैं, ये किसने किया है? अल्लाह कहते जब तुम इन सबसे पूछोगे जो अल्लाह को नहीं भी मानते कि किसने पैदा किया, तो ज़रूर वो यही कहेंगे कि अल्लाह ने। तो इनसे कहो फिर तुम उससे डरते क्यों नहीं। तो ज़ुबान से कहना बड़ा आसान है, असल बात अमल की है। तो अल्लाह को रब मानना ये छोटी बात नहीं है। इसकी कुछ शरायत है। पहली शर्त कि इंसान अल्लाह ताला को जब रब कह रहे ना, तो इसके बारे में उसको इल्म भी हो। यानी मैं किसी की सुनी सुनाई पे अल्लाह को एक कह दूंगी ना, बात नहीं बनेगी। अल्लाह को एक मानने की पहली शर्त क्या है कि बंदे को अल्लाह के बारे में इल्म हो। अल्लाह के बारे में कितना को इल्म काफ़ी है? जितना कुरान और हदीस में आ गया। खालिक के ऊपर ज़्यादा गौर नहीं करना वरना बहक जाएंगे। हदीस में आता है कि शैतान तुम्हारे पास आता है, फिर तुम्हें कहता है तुम्हें किसने पैदा किया, फिर तुम कहते हो अल्लाह ने, फिर वो आता है कहता अच्छा ये बताओ कि अल्लाह को किसने पैदा किया। तो इतना गौर ना करो। गौर व फिक्र मखलूक पे करना है। इन्ना फ़ी खल्क़ि समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़ि लैली वन नहारी। इन पे गौर करो, सूरज कैसे आ रहा है, चाँद कैसे आ रहा है। लेकिन इस गौर व फिक्र के बाद जिस ज़ात को पाना है वो अल्लाह की ज़ात को पाना है। अल्लाह के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, वो कैसा है, उसके हाथ है। अब आप देखिए दुनिया में जहाँ भी शिर्क फैला, कोई ना कोई शबीह तो उन्होंने रब की बनाई ना। किसी ने हनुमान की शक्ल में बना दिया, कहीं किसी ने उसको कृष्णा की शक्ल में बना दिया, काली देवी की सूरत में काली माता, कुछ बना ही ना कुछ शब्द। अल्लाह क्या कहता है, लैस कमिस्लिही शैय वहुव समीउल अलीम। उसकी तो मिसाल जैसा भी कोई नहीं है, लिहाजा कोई ये ना सोचे कि अल्लाह हम जैसा है। ठीक है, तो पहली शर्त क्या है, इल्म। जाने कई लोगों ने तो अल्लाह के बारे में इतनी गलत बातें कह दी, अंदर तू बाहर तू ऊपर तू नीचे तू तू मेरे अंदर तू उधर। कितनी आप कभी कुछ कवालियों के बोल सुन के देखें, कभी कुछ ऐसे भजन देखिए, लोगों ने अल्लाह की ज़ात को हर जगह हाजिर नाजिर कर दिया। तो ये अल्लाह के बारे में सही अकीदा तो नहीं हुआ। अल्लाह के बारे में सही अकीदा होना बहुत लाजमी है। तो हम कभी इस पर फ़ख्र ना करें कि हम मुसलमान हैं, यकीन करें। इसके लिए सबसे खूबसूरत तरीका क्या है कि आप अल्लाह ताला के नामों और उसके सिफात पे गौर करें। आप देखिए कि हम सब दुनिया में जिस चीज़ का भी इल्म हासिल कर लें, सबसे बड़ा इल्म अल्लाह की ज़ात के बारे में इल्म हासिल करना है। तो अल्लाह ताला के 99 नाम है, 99 नेम्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू अल अस्माउल हुस्ना। हमें कैसे पता चले कि हमारा रब कौन है, हमारा खालिक हमारा मालिक कौन है, जब हम उसके बारे में जानेंगे। कितनों के बारे में जानते हैं, कैसे हम कह सकते हैं कि हमें अल्लाह से प्यार है लेकिन हम उसके बारे में जानते नहीं। हम तो बिल्कुल भी सोच भी नहीं सकते कि अल्लाह की ज़ात कितनी बड़ी ज़ात है। तो लिहाजा इसके बारे में इल्म लेना हम सब का फ़र्ज़ है। लीस्ट इतना तो लें कि हम अल्लाह के बारे में गलती ना करें। बस आप देखिए कि जैसे हम अपनी माँ का सिर्फ नाम लेते हैं, क्या हमें अपनी माँ के बारे में पता है ना, उसको क्या अच्छा लगता है, वो क्या करती है, माँ का क्या स्टेटस है, माँ को हमसे क्या मतलूब है, उसको क्या पसंद है। लेकिन दुनिया में सिर्फ एक मफहूम है ना कि माँ की मिसाल, अल्लाह को माँ जितना प्यार है, तो फिर अल्लाह के बारे में हमें क्यों नहीं यकीन कि हम अल्लाह को भी खुश करें। फिर अगली शर्त जो है कलमे का जो तकाजा है वो क्या है कि इंसान यकीन रखे। शक की बुनियाद पर अकीदा नहीं कबूल होता। मेरा ख्याल है कि अल्लाह है, हाँ मेरा ख्याल है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, यस यकीन है। दिल पर पूरे इत्मीनान के साथ इंसान का यकीन हो कि जी ला इलाहा इल्लल्लाह। आप कहेंगे हमें इसकी क्या ज़रूरत है। एक बच्चे ने अपनी माँ से पूछा जो कि मुसलमान बच्चा था, कहने लगा अम्मी आपको कैसे पता है कि इस्लाम ही ठीक है, शायद मेरे दोस्त का दीन ठीक हो, और अम्मी आपको कैसे पता है कि मुसलमान ही होना चाहिए, काफिर क्यों ना हो, अल्लाह है आपको क्या पता, हो सकता है जीजीजी गॉड हो। तो ये क्या चीज़ है, ये बेयकीनी पैदा हो रही है। और आज आपको पता है कि ये चीज़ें हमारे नस्लों में बहुत ज़्यादा आम की जा रही है। तो लिहाजा आप किसी वक्त बैठें अकेले और सोचें, क्या वाकई मुझे यकीन है, क्या वाकई मेरा अल्लाह की ज़ात के ऊपर है यकीन। फिर इसके बाद आप देखिए कि अल्लाह ताला के बारे में एक और शर्त हमारी आपकी क्या है कि हम उसको दिल से कबूल करें। दिल से कबूल करेंगे तो इंशाल्लाह बात बनेगी। और आखिरी चीज़ इसमें क्या है कि इताअत का जज्बा। मैं अल्लाह तेरी हर बात मानूंगी और इसको यकीन से मानूंगी। मैं सोचती हूँ सिर्फ हम इसी पे सोचें ना तो सर झुक जाते हैं। अभी तो हमारा ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पूरा रहा, मोहम्मद रसूलुल्लाह आ गए, अभी नमाज रोज़ा हज सारे अरकान तो पीछे पड़े हुए। तो खुशफहमियाँ दूर हो जाती हैं जब बंदा इल्म की बुनियाद पर कोई अमल करता है। जब हम अल्लाह सुबहाना ताला को एक मान लेते हैं इखलास के साथ, शरायत कबूलियत की सारी आ जाती हैं, तो अल्लाह ताला को मानने में एक और भी बुनियादी चीज़ रखी है कि मोहब्बत हो उसे। हम गुस्से के साथ अल्लाह को नहीं मान सकते, क्या मुसीबत है उसने मुझे पैदा कर दी है, नहीं, प्यार वल्लज़ीना आमनू अशद्द हुब्बल लिल्लाह। किसी चीज़ में बंदे के दिल में अल्लाह के लिए बुग़्ज़ या नफ़रत नहीं आनी चाहिए। बस लोगों को अल्लाह माफ़ करे, जब ज़िंदगी में कोई सदमा पहुँचता है ना, तो वो कहते हैं जी कि बस अब तो मैंने अल्लाह से भी कई गलत बातें मुंह पे मेरा दिल नहीं करा लाऊं। लेकिन बाज़ दफ़ा दुख में लोग अल्लाह के बारे में बहुत गलत बातें कर देते, नहीं करने की ज़रूरत, इससे ईमान इंसान का कमज़ोर होता है। सारी बातों को जब आप जमा करें ना, तो मुझे तो ऐसे लगता है कि एक ईमान वाला क्या है, बिल्कुल रुई का गोला, तोड़ मोड़ के कोई उसको अल्लाह के आगे फेंक दे और वो अल्लाह ताला की बात को मान लेता है। मेरी और आपकी क्या औकात है? बात करते करते अगर गले में ज़रा सा पानी आ जाए ना, तो इंसान बोलना रोक सकता है, कहाँ हम फिर इसके ऊपर और बात कर सकते हैं। तो ये अल्लाह ताला की ज़ात है कि जिसने हम सबके लिए किया।